नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद दसवा अध्याय छठा श्लोक क्रमांक 37 और 38। पद्भ्याम भक्त हृदि स्थाभ्याम वंदाभ्याम लोकवंदितै अंगम यस्य समाक्रम्य भगवान् अपि तत्स्तनम् यातु धान्यपि सा स्वर्गम् अवापजननी गतिम् कृष्ण भुक्तस्तन क्षीराह किमुगावो नु मातरः। पद्भ्याम दोनों चरण कमलों से भक्त हृदि स्थाभ्याम जिनके हृदय में भगवान निरंतर स्थित रहते हैं वंद्याभ्याम जिनकी सदैव वंदना की जानी चाहिए लोकवंदितै ब्रह्मा तथा शिव द्वारा जो तीनों लोकों के वासियों द्वारा प्रशंसित है अंगम शरीर को यस्या जिस पूतना का समाक्रम्य आलिंगन करके भगवान अपि भी तत्स्तनम उस तन को या तो धानी अपि यद्यपि व डायन थी सा उसने स्वर्गम दिव्य धाम को अवाप प्राप्त किया जननी गतिम माता के पद को कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा क्योंकि उनके स्तनों का पान कृष्ण ने किया था किमु क्या कहा जाए गावह गवों अनुमातरह माताओं की ही तरह जिन्होंने कृष्ण को अपना स्तनपान कराया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव जैसे पूज्य व्यक्तियों द्वारा सदैव वंदनीय हैं क्योंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था और उसके डायन होते हुए भी उन्होंने उसका स्तनपान किया था इसलिए उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिली। तो भला उन गौओं के विषय में क्या कहा जाए जिनका स्तनपान कृष्ण बड़े ही आनंद से करते थे और जो बड़े ही प्यार से माता के ही समान कृष्ण को अपना दूध देती थी। तात्पर्य, ये श्लोक बतलाते हैं कि भगवान की भक्ति चाहे प्रत्यक्ष की जाए या अप्रत्यक्ष, ज्ञान से की जाए या अनजाने में, वह हर समय सफल होती है। पूतना न भक्त थी और न ही अभक्त, वह तो कृष्ण को मारने के लिए कंस द्वारा भेजी गई एक राक्षसी थी। फिर भी पहले उसने अत्यंत सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और कृष्ण के पास उसी तरह पहुंची जैसे स्नेहमयी माता जाती है, जिससे माता यशोदा और रोहिणी ने उसकी निष्कपटता पर संदेह नहीं किया। भगवान ने इन सब बातों को ध्यान में रखा, अतः उसे माता यशोदा जैसा ही पद प्राप्त हुआ। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बतलाया है, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति अनेक भूमिकाएं निभा सकता है। पुतना को तुरंत वैकुंठ लोक भेज दिया गया, जिसे कभी भी स्वर्ग भी कहा जा सकता है। इस श्लोक में वर्णित स्वर्ग कोई भौतिक लोक नहीं, अपितु दिव्य वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक में पूतना को धात्र का पद प्राप्त हुआ, धात्रुचितम, जैसा कि उद्धव ने बतलाया है। गोलोक वृंदावन में माता यशोदा की सहायता करने के लिए उसे धात्री या दासी का पद दिया गया। ओम अज्ञानति। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव जैसे पूज्य व्यक्तियों द्वारा सदैव वंदनीय हैं। क्योंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था और उसे डायन होते हुए भी उन्होंने उसका स्तनपान किया था, इसलिए उसे दिव्य लोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिली। तो भला उन गौओं के विषय में क्या कहा जाए जिनका स्तनपान कृष्ण बड़े ही आनंद से करते थे और जो बड़े ही प्यार से माता के ही समान कृष्ण को अपना दूध देती थी। श्रीमद् भागवत की तुलना पारसमणि से की गई है, टचस्टोन जिसे कहते हैं, कि जिसके संपर्क में आने मात्र से कोई भी वस्तु वो मूल्यवान हो जाती है। और इसी श्रीमद् भागवत में ये ऐसे प्रसंग हैं जैसे कि पूतना वध जो हम आज ले रहे हैं। पूतना अब इस स्थिति से पहले वो कंस का संगी थी, तो जब वो कंस के संग में थी तो उसका जीवन बहुत पतित बताया गया है। एक खेचरी, एक राक्षसी, अलग अलग प्रकार के उसके जो दुर्गुण हैं उसके विषय में चर्चा की गई है। परंतु जैसे वो भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आई तो वही डायन, यहां पर ये जो अनुवाद दिया गया है पूतना को डायन कहा गया है, वही डायन पूतना अब माता यशोदा के समान उसे पद मिला। तो यहां पर इस उदाहरण से हम साफ साफ देख सकते हैं कि वही व्यक्ति जब कंस के संपर्क में या माया के संपर्क में आता है तो क्या हाल होता है, और वही व्यक्ति जब भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आता है तो क्या गति होती है। श्रील प्रभुपाद अक्सर अपने प्रवचनों में और पुस्तकों में ये उदाहरण दिए हैं प्लगिंग इन का। When living entity plugs into the external energy, then is within the three modes. And when the living entity plugs in to the internal energy, he becomes transcendental. और श्रील प्रभुपाद इसके संदर्भ में उदाहरण दिए कि जैसे आप के पास कोई उपकरण है तो जब आप उसको प्लग इन करते हो तो जो एनर्जी है वो एनर्जी के अनुसार आप देखोगे कि उसके अंदर परिवर्तन दिखाई देता है। तो आज हम हमारी इस मॉर्निंग क्लास में इस विषय पर चर्चा करेंगे एसोसिएशन विथ मैटर एंड एसोसिएशन विथ स्पिरिट, दोनों के रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण यहां पुतना का है, पुतना एसोसिएटिंग विथ कमसा, पुतना एसोसिएटिंग विथ कृष्णा। और ये जो दो श्लोक आज हमने लिया जिसके अंदर सुखदेव गोस्वामी वो पुतना का गुणगान कर रहे हैं, और पुतना का गुणगान इसलिए हुआ है कि पुतना भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आई, ये न के न प्रकारेण, चाहे वो मारने आई भगवान को कंस द्वारा प्रेरित, और उसकी भी इच्छा थी बच्चों को मारने की, चाहे कोई भी कारण के वजह से, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आए, जैसे कि हम लोग ये न के न प्रकारेण भगवान के संपर्क में आ गए। कितने विभिन्न कारण होंगे, कितने हमारे जन्मों के, जिसके वजह से आज हम यहां श्री राधा मदन गोपाल जी के सामने बैठे। तो सुखदेव गोस्वामी यहां पर एक न्याय प्रस्तुत कर रहे हैं, कैमुत्तिक न्याय। इसका अर्थ है कि यदि पुतना को भगवान ने इतनी कृपा दी तो फिर माता यशोदा का क्या कहना। इसको बोलते हैं कैमुत्तिक न्याय, कि इससे ज्यादा अधिक और हम इसकी पराकाष्ठा कैसे सिद्ध कर सकते हैं। हाउ मच मोर देन दिस, इंग्लिश में ये दिखा है, हाउ मच मोर देन दिस। जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है और उसे कॉलेज में 4 KT लगी है, और उसे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया, तो सोचो तो जो टॉपर है उसको क्या बनाएंगे फिर, जिसको उस कॉलेज में 4 KT लगी है उसको कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। या वो कुछ साल पहले आतंकवादी आए थे मुंबई में, अजमल कसब, मान लीजिए अजमल कसब को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना दिया जाए, तो जो मुंबई शहर को खत्म करने के लिए आया उसको पुलिस कमिश्नर बना दिया, तो सोचिए कि जो उस शहर में सारे नियमों का पालन कर रहा है, भारत की सेवा कर रहा है, उसका क्या कहना, किम उतः। इसको कहते हैं कैमुत्तिक न्याय। तो वही पुतना, अगर पुतना की तुलना एक आतंकवादी से की जाए, इस कसब से की जाए, तो वो आई और कसब तो साधारण नागरिकों को मारने गया था वहां, तो पूतना साधारण ब्रजवासियों को मारने नहीं गई थी, वो तो डायरेक्टली जो वृंदावन चंद्र हैं, द मून ऑफ वृंदावन, खत्म करने गई। तो देखिए, कल्पना कीजिए पूतना आध्यात्मिक संसार में, पूतना का एंट्री आध्यात्मिक संसार में हो रहा है, तो सब में चर्चा होगी ना कि भाई क्या इसने ऐसा किया है कि इसको एंट्री मिल रही है, वो भी गोलोक वृंदावन में। और ऑलरेडी भगवान ने उसका डिपार्टमेंट, पोस्ट, पोर्टफोलियो सब कुछ फिक्स कर दिया है कि वो माता यशोदा के समान मेरी देखरेख करेगी। कई बार हम लोग कोई भक्ति में कैसे आया है उसके ऊपर बहुत गौर करते हैं कि वो क्या था और अब भक्ति में आने के बाद क्या बन गया, तो उससे ज्यादा कुछ प्रेरणा भी मिलती है हमको। तो अब पूतना आध्यात्मिक संसार में, यदि वहां के वासी, आध्यात्मिक संसार के वासी एक दूसरे से पूछें या भगवान से पूछें कि इसमें क्या आपने देखा कि इसे ऐसा पद आपने दिया, और श्री वैष्णव आचार्य वो इस पूतना की लीला के संदर्भ में कहते हैं कि जब पूतना आध्यात्मिक संसार पहुंची और भगवान ने उसको वो पद दिया धातृचितम, तो जब भी गोलोक वृंदावन में बाल गोपाल भगवान जब माता पुकारते, छोटे बच्चे अक्सर दिन में कितनी बार पुकारते रहते हैं मम्मी माता, तो जब भगवान अपनी माता को पुकारते तो तीन स्त्रियां उपस्थित हो जाती, माता यशोदा, माता देवकी और पूतना। तो अब देखिए कि इसमें यह भी समझ में आता है कि आध्यात्मिक संसार में कोई दोष दृष्टि नहीं है, नहीं तो यदि पूतना भी भाग के आती माता यशोदा और देवकी के साथ तो बाकी कहते अरे क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को, अपना हिस्ट्री जानती हो कि नहीं, क्या करने वृंदावन में आई थी तुम, वहां पर कोई दोष दृष्टि नहीं है। तो पूतना को, ये जो पूतना का कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण से हुआ और वही पूतना जब कंस के साथ कनेक्टेड थी, ऐसी राक्षसी, उसका विश्लेषण दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना के पास क्या, उसका बायोडाटा क्या था, उसका बायोडाटा देते हैं सुखदेव गोस्वामी। सबसे पहले तो उसकी पैदाइश, पूतना पैदा कहां हुई थी, राक्षस कुल में, ऐसा भी नहीं कि कोई उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में पूतना पैदा हुई जिसके वजह से भगवान कुछ एक गुण देखते उसके अंदर, पैदाइशी डायन, लो बर्थ। और फिर हो सकता है कि कोई यदि ऐसे कुल में पैदा भी हो जाए, परंतु कम से कम अपने कर्मों को तो सुधार सकता है, लेकिन नहीं, वो पैदा भी हुई और जिस कुल में वो पैदा हुई जैसे कि डायन, वैसे ही कर्मों में भी लगी वो। सो लो बर्थ, डिग्रेडेड एक्टिविटीज। तो फिर मान लो कोई ये कहे कि किसी के कर्म भी गर्हित हों, परंतु कम से कम अच्छे संग में आ जाए, तो उसके गर्हित कर्म से वो व्यक्ति बाहर आ सकता है। तो संग किसका क्या करती थी पूतना, सारे अन्य डायनों का, और राक्षसियों का संग, लो बर्थ, डिग्रेडेड एक्टिविटीज, डिग्रेडेड एसोसिएशन। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, और डिग्रेडेड एक्टिविटीज क्या थी उसकी, एक्टिविटीज तो हमने बताई नहीं आपको। पूतना लोक बालघ्नी, बच्चों को मारने में, जान से मारने में, ऐसा नहीं थप्पड़ मारने में, वो थप्पड़ ऊपर नहीं मारती थी, बच्चों को जान से मार डालती थी। तो पूतना बच्चों को जान से मार डालने में आनंद लेती थी। जय श्री राधा मदन गोपाल भगवान की। लेकिन कंस और पूतना के विषय में एक बात कही गई है, श्रील प्रभुपाद भी एक मॉर्निंग वॉक कॉन्वर्सेशन में कहे, कंस एंड पूतना देवर किलर्स ऑफ चिल्ड्रन, दोनों बच्चों को मारने में माहिर थे दोनों, लेकिन कभी अबॉर्शन नहीं किया उन्होंने, गर्भ में किसी को नहीं मारा। तो प्रभुपाद बोल रहे थे कलयुग में जो स्त्रियां शिशु को गर्भ में मार डालती हैं वो पूतना से भी गई गुजरी हैं। बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है वो। तो पूतना लोक बालघ्नी, बालकों को मारने में जो आनंद लेती, ये पूतना। और फिर सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, डिग्रेडेड एक्टिविटीज, डिग्रेडेड एसोसिएशन, डिग्रेडेड ईटिंग हैबिट्स। वो क्या खाती थी पूतना, रुधिर आसन, खून पीती थी इन बच्चों का, वो उसका ड्रिंक हुआ करता था। तो ये अगर हम देखें कि किसी व्यक्ति को हम यदि एक लेबल दें कि ये व्यक्ति पतित है, तो ये सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उस लेबल में। लो बर्थ, डिग्रेडेड एक्टिविटीज, डिग्रेडेड एसोसिएशन, डिग्रेडेड ईटिंग हैबिट्स। जब ये सब इंग्रेडिएंट्स, मतलब वो व्यक्ति पतित हर प्रकार से। तो अब देखिए कि ऐसी ये पूतना किसी मायने में कोई भी शुभ कार्य पूतना का नहीं था, लेकिन जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो उसके शरीर से अगुरु की सुगंध पूरे ब्रजमंडल में फैलने लगी। अब अगुरु कलयुग में तो देखने को भी नहीं मिलता, सूंघना तो दूर की बात है। तो अगुरु की सुगंध किसी के मृत शरीर से, और वो भी किसके मृत शरीर से, ऐसी राक्षसी पूतना जिसका अभी बायोडाटा हमने दिया, अगुरु की सुगंध निकल रही। जैसे मानो कि उसको जब जलाया गया तो मानो कि जैसे हम अगरबत्ती जलाते ना, तो मानो कि 12 मील या 8 मील लंबी अगरबत्ती अगुरु की बनी हुई सुगंध, इतनी बड़ी अगरबत्ती, उसको जलाने से सुगंध फैल रही सब जगह पर। अब एक राक्षसी का शरीर तो छोड़ दीजिए, हमारा शरीर लें हम, जो हम लोग इतना 16 माला कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, इस शरीर को भी हमको रोज साफ करना पड़ता है, नहीं तो बदबू आना शुरू हो जाती, और वो भी जीते जी बोल रहे हैं हम, ये जब जी रहे हम, आत्मा अंदर है, फिर भी ये शरीर में से बदबू आती है। सोचिए मृत शरीर कितना दुर्गंधित मृत शरीर होता है किसी का, और वो भी ये पूतना जो ऐसे खून पीती थी, मांस खाती थी। जो ये मांसाहारी होते हैं उनके शरीर से बिना वो मतलब कितना भी वो साफ करने फिर भी उनके पसीने से इतनी बदबू निकलती है कि आप 2-3 फीट नजदीक नहीं खड़े हो सकते उनके। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे का मृत शरीर अंदर खाया हुआ है, तो पहले से ये मृत शरीर सड़ रहा है, उसके ऊपर से और एक सड़ा हुआ शरीर अंदर डाल दिया, तो देखो डेडली कॉम्बिनेशन, इसलिए उसको डेडली बोलते हैं, सब डेड बॉडी सब। तो ये थी पूतना जो रक्त पीती थी, मांस खाती थी, ऐसा संग करती थी, लेकिन जब उसका शरीर जलाया गया तो अगुरु के समान सुगंधित। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? ये कौन सा परफ्यूम और डिओड्रेंट लगाया उसने? भगवान श्री कृष्ण का कनेक्शन, कृष्णा फैक्टर। तो अब देखिए, हम लोग कई बार भक्ति में आने के पश्चात हम मायूस रहते हैं कि मेरा तो होपलेस केस है, पता नहीं कब अगुरु की सुगंध आएगी, मतलब कब वो सही कनेक्शन होगा। समटाइम्स वी बिकम सो डिजेक्टेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस की जैसे कई बार कई भक्त बोलते हैं, अरे मेरा तो पिछला जीवन इतना पापमय था। यहाँ पे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने श्रीमद् भागवत में दिए, अगर कोई कहे कि मैं भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पिछला जीवन इतना पापमय था, तो पूतना का बायोडाटा सामने रखें हम कि क्या हमने ऐसे पाप किए, बच्चों को मार के उनका खून पीना किसी ने नहीं किया, इस कमरे में किसी ने नहीं किया। तो कोई अगर ये कहे कि इसके वजह से मैं भक्ति में प्रगति नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पिछले कर्म ऐसे, तो जगाए, मधाई, पूतना इन सब का उदाहरण है। कई बार एक भक्त, मुझे इस पे हंसी आ रही थी, वो बोल रहे थे कि मैं भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो मैंने कहा ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए? बोले नहीं, इस्कॉन में नो इंग्लिश नो कृष्णा। जैसे राधा गोविंद महाराज अपने एक प्रवचन में वो कह रहे थे, अंग्रेजी भाषा के बारे में बहुत बोलते रहते हैं, तो बोल रहे कि ये अंग्रेजी भाषा जो है म्लेच्छों की भाषा है। म्लेच्छ का अर्थ क्या होता है? मलम इच्छति इति म्लेच्छ। हाँ, म्लेच्छ का अर्थ है मलम इच्छति इति म्लेच्छ, जो एकदम गंदगी मल उसके इच्छा रखने वाले वो म्लेच्छ। तो बोल रहे थे कि ये म्लेच्छों की भाषा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऐसी बरसाई म्लेच्छों के ऊपर और उनकी भाषा के ऊपर कि उनकी भाषा को लेकर श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत अनुवादित किया और इस अंग्रेजी मलम इच्छति भाषा को ट्रांसेंडेंटल बना दिया। श्रील प्रभुपाद की तो इसी प्रवचन में राधा गोविंद महाराज को एक भक्त पूछ रहे थे, तो क्या भगवान श्री कृष्ण, हम कोई भी भाषा बोले, भगवान श्री कृष्ण सब भाषा जानते हैं, बोल सकते हैं? मतलब अगर मैं तेलुगु में भगवान को प्रार्थना करूं या मलयालम में करूं या गुजराती, जो भी, तो भगवान समझेंगे? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, भगवान श्री कृष्ण सब भाषा जानते हैं, एक भाषा को छोड़ के, उर्दू। हालांकि वो भी जानते हैं, वो मजाक में बोल रहे थे। तो कोई कहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, एक भक्त बोल रहे थे कि मुझे भागवतम क्लास में नींद आती है क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती। तो हमने कहा हमको आपको हम ऐसे ऐसे भक्त दिखाएंगे जो संस्कृत के स्कॉलर हैं और भागवतम क्लास में इत्मीनान से सोते हैं। तो कोई भी हम कारण नहीं दे सकते कि जिसके वजह से हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। भगवान ने ऐसा कोई भी पाप नहीं छोड़ा उसके उदाहरण के साथ जिसको भगवान ने कृपा नहीं दी। इसलिए ये जो पॉजिटिविटी है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, ये इसका इसकी जो शक्ति है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, वो इतनी है कि अगर हम खाली कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो पॉजिटिविटी है उस पर गौर करें तो वो उसका उसकी मात्रा इतनी है कि ये हमारी नेगेटिविटी कहीं पे दिखाई नहीं देने वाली। जैसे श्याम सुंदर प्रभु श्रील प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने कहा कि श्रील प्रभुपाद एक प्रॉब्लम हो गई है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से पहले कुछ मुझसे क्राइम हो गया था जिसके वजह से। तो प्रभुपाद ने पूछा क्या क्राइम हुआ था, वो कहे कि मैं ड्रग्स डीलिंग करता था, मैं ड्रग डीलर था। तो प्रभुपाद अब देखिए ये बता रहे हैं कि वो ड्रग डीलर थे। प्रभुपाद ने कहा मैं भी ड्रग डीलर था, प्रयाग फार्मेसी मेरी दुकान थी। तो अब वो श्याम सुंदर प्रभु एकदम डरे हुए सहमे हुए सीरियसली प्रभुपाद को बता रहे हैं कि वो ड्रग डीलर थे और प्रभुपाद ने यहां पे पॉजिटिव लिया है। प्रभुपाद ने कहा आई वाज आल्सो ड्रग डीलर, प्रयाग फार्मेसी अलाहाबाद प्रयाग। तो बोले प्रभुपाद आई विल हैव टू गो टू जेल। तो प्रभुपाद बोले सो व्हाट, आवर कृष्णा वाज बोर्न इन जेल। तो वो कारण दे रहे थे कि इन कारणों के वजह से वो प्रभुपाद की सेवा कुछ समय के लिए नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रभुपाद ने वो कारणों पे गौर ही नहीं किया और उन कारणों को उनके अंदर पॉजिटिविटी प्रभुपाद ने देखी। तो अगर हम कुछ कारण लेके आते हैं कि इसके वजह से मैं जप नहीं कर सकता, इसके वजह से मैं भक्ति में प्रगति नहीं कर पा रहा, इसके वजह से मेरी साधना ठीक नहीं हो रही, तो चाहे जितनी भी वजह हम लेकर आ जाएं, वो पलड़ा होता ना, एक पलड़े में हम जितने बहाने हो कलयुग के इकट्ठा कर कर लाएं, एक्सक्यूजेस बहाने कारण, और दूसरे पलड़े पर भगवान श्री कृष्ण की दया, यहां तक कि उद्धव जो कि इतने बड़े विद्वान हैं वो भौचक्का रह गए, और ये पूतना वध के लीला के पश्चात कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, कि मैं अब सोच भी नहीं सकता। इसलिए उद्धव जी का ये उद्गार है कि ये पूतना अघासुर और बकासुर एक ही फैमिली के थे भाई बहन, दो भाई कौन अघासुर बकासुर और पूतना इनकी बहन, तो पूरा फैमिली बिजनेस था भगवान को मारने का। जैसे कईयों का बिजनेस होता है ना कृष्णा कंस्ट्रक्शंस, वैसे इनका था कृष्णा डिस्ट्रक्शन कंपनी। तो उद्धव जी का उद्गार ये कि ये पूरे परिवार को है भगवान आपने ऐसी ऐसी कृपा दे दी है, तो आपके पास कुछ कृपा का स्टॉक बचा है क्या ब्रजवासियों के लिए? कम्वा दयालुम शरणम ब्रजे में। और फिर वो पहले तो फोकस भगवान के ऊपर, पूतना के ऊपर, अघासुर बकासुर इनके ऊपर रखे कि मैं भ्रमित हो रहा हूं कि आपके पास कुछ स्टॉक है क्या कृपा का ब्रजवासियों के लिए, जो कि श्रद्धा से आपको दूध पिला रही है ये गौवें जो हैं और माता यशोदा रोहिणी इत्यादि। और फिर वहां से फोकस हटाकर वो हम सब के ऊपर फोकस रख रहे हैं, कौन? उद्धव जी। अरे मूर्खों, इनसे दयालु और कौन मिलेगा? अगर इनकी शरण ग्रहण नहीं करोगे तो फिर कोई उद्धार का कारण आपके लिए नहीं रह जाएगा। तो ये पूतना, ये जो कैमुति कन्याएं के द्वारा आज के श्लोक में भी, कि जब इतना सब कुछ पूतना षड्यंत्र रचा कर मारने के लिए आए, उसे ऐसा पद दे दिया। दूसरा उदाहरण हम देखें तो परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज जो कि पूरी पृथ्वी के राजा, और उन्हें शाप मिला कि 7 दिन में तक्षत आकर आपको डसकर खा जाएगा। तब परीक्षित महाराज जो कि पूरी पृथ्वी के राजा, पांडवों के वंशज, अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो क्या उनके पास नहीं था उनकी भौतिक सुरक्षा के लिए? What matter could not give to परीक्षित महाराज? He was the king of the entire planet. लेकिन फिर भी उनको जो वो शाप मिला तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए। और परीक्षित महाराज फिर कहते हैं, जो कि जैसे उनको शाप मिला तो परीक्षित महाराज उसको काउंटरैक्ट करने के बदले परीक्षित महाराज गोस्वामी से कनेक्शन किए। अब परीक्षित महाराज की एक तरफ पूरे पृथ्वी का राज्य, कौन था ये ब्राह्मण पुत्र, शमिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी, एक छोटा सा बालक, उसने शाप दिया पृथ्वी के राजा को। तो पृथ्वी के राजा को एक छोटे से बालक ने शाप दिया, मानो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है और उसे कोई, ये बच्चे खेलने आते हैं अपने गली में यहाँ पे, तो इनमें से कोई बच्चा प्रेसिडेंट वो बराक ओबामा को कुछ बोल देता है और बराक ओबामा अपना प्रेसिडेंशियल पोस्ट छोड़कर वो वन वन भटक रहा है। क्यों? क्योंकि नासिक में वृंदावन कॉलोनी में एक बच्चे ने कुछ बोला। क्या हेडलाइंस बनेगी देखो। तो एक तरफ परीक्षित महाराज का इन्फ्लुएंस, मटेरियल इन्फ्लुएंस बोल रहे हैं, क्या मटेरियल इन्फ्लुएंस उनका था, लेकिन जैसे ही उनको शाप मिला तो उन्होंने अपना प्लग, आज हम किसी चर्चा करें प्लग इन, उन्होंने प्लग कहां डाला? सुखदेव गोस्वामी को ढूंढकर वहां पर प्लग इन किया। और जैसे ही वहां प्लग इन किया तो ऐसा कॉन्फिडेंस परीक्षित महाराज के अंदर आया, क्या कॉन्फिडेंस आया, कि चाहे वो तक्षक हो चाहे कोई भी सर्प हो, अभी आए, 7 दिन बाद आए, कभी भी आए, मुझे कोई चिंता नहीं है। इसलिए परीक्षित महाराज एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हुए। ये है फर्स्ट कैंटो में जो चैप्टर है अपीयरेंस ऑफ सुखदेव गोस्वामी, उसमें परीक्षित महाराज कहते हैं, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृह किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। इस श्लोक में परीक्षित महाराज कहते हैं, येषां संस्मरणात् पुंसा, कि आप जैसे संत, हे सुखदेव गोस्वामी, आप जैसे संतों का कोई स्मरण भी कर ले, सद्य शुद्ध्यन्ति वैग्रह, उनके सारे घर पवित्र हो जाते हैं। खाली स्मरण करने मात्र से गृह शुद्ध्यन्ति पूर्ण रूप से, जो उस गृह में उस घर में रह रहे हैं और वो गृह वो सब शुद्ध हो जाते हैं खाली सुखदेव गोस्वामी आप जैसे संतों का स्मरण करने से। यहां पर भी कैमुत्तक न्याय है, किम पुनः, फिर आपका दर्शन स्पर्श और आपके चरण धोने का क्या कहना फिर। तो चक्रवर्ती ठाकुर, ये जो पाद शौचा सनादि भी, वॉशिंग द फीट ऑफ सुखदेव गोस्वामी की टीका में लिखते हैं, उसका अर्थ क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉशिंग द फीट ऑफ ग्रेट सोल्स लाइक सुखदेव गोस्वामी टू हियर फ्रॉम देम? ये कोई रिचुअलिस्टिक कर्मकांडिक विधि नहीं है कि चरण धो के बस पी लिया या डाल लिया तो हो गया। नहीं, उनके श्रीमुख से सुनना, वो है बेदिंग, एक्चुअल बेदिंग। तो ये परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी के कनेक्शन में आए तो जितना उनका मटेरियल इन्फ्लुएंस था, वो सारा मटेरियल इन्फ्लुएंस को उन्होंने क्या किया, उसको तिलांजलि दी कि वो किसी काम का नहीं है मेरा। ये परीक्षित महाराज अपने उदाहरण से, और यहां तक कि तक्षक से उनको तनिक भर भी भय नहीं था। तो ये एक साइन है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण से कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कितना है इस संसार के जो तक्षक हैं उनको डील करने में, ये परीक्षित महाराज सिखा रहे हैं। अब परीक्षित महाराज के लिए तो इतना बड़ा तक्षक वो श्रृंगी ने भेजा, हमारे जीवन में छोटे मोटे तक्षक छोड़ दीजिए, कॉकरोच मकोड़े इत्यादि आते रहेंगे कितने सारे, लेकिन हमारे जीवन में वो कॉन्फिडेंस कितना है उसको डील करने का, ये परीक्षित महाराज हमें सिखा रहे हैं। जैसे कुछ वर्ष पहले पाश्चात्य देश में एक मंदिर, मेरे ख्याल से यूरोप में, तो वो लोग रथ यात्रा आयोजन कर रहे थे। तो अब रथ यात्रा बहुत बड़े पैमाने पर, कुछ 25,000-30,000 लोग एकत्रित होंगे, और उन्होंने एक ग्राउंड फिक्स किया था जो कि बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन में था उस सिटी के। तब हुआ क्या कि उस सिटी के जितने एनवायरमेंटलिस्ट, वो लोग सब एकत्रित हुए और उन्होंने कंप्लेंट किया वहां के गवर्नमेंट को कि ये जो ग्राउंड यूज करने वाले हैं, जहां पर पूरा ग्रीन कवर है हमारे सिटी का, तो इनके रथ यात्रा और पंडाल प्रोग्राम के वजह से वो पूरा ग्रीन कवर खराब हो जाएगा, जिसके वजह से एनवायरमेंट को असर पड़ेगा, एनवायरमेंट को असर पड़ेगा, और उसके वजह से जो हमारा सिटी का जो एनवायरमेंट है वो खराब हो जाएगा। तो अब एक डिवोटी, एक ब्रह्मचारी, उन्होंने ये निश्चय किया कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होनी है और पंडाल प्रोग्राम उसी ग्राउंड पे ही करेंगे, चाहे जो हो जाए। तो अभी सभी, उन्होंने क्या किया, ये जो एनवायरमेंटलिस्ट, इन्होंने एक टॉक शो रखा टीवी पर, एनवायरमेंटलिस्ट अगेंस्ट हरे कृष्णा। क्योंकि ये लोग जानते थे कि ये हरे कृष्ण वाले खाली एक ही चीज जानते हैं, हाथ ऊपर कर कर कीर्तन करना, बाकी एनवायरमेंट के बारे में, साइंस के बारे में ये लोग क्या जानते। तो जब हम टीवी पर ये टॉक शो रखेंगे तो उसमें होगा क्या कि सब लोग देखेंगे कि कैसे ये लोग हारे हैं एनवायरमेंटलिस्ट के अगेंस्ट, और फिर हमको इन सब का भी वोट मिल जाएगा। तो ये उनका स्ट्रैटेजी था। तो एक मीडिएटर रखा था, वो मीडिएटर तो एक तरफ, ये तो ये ब्रह्मचारी जिन्होंने प्रण लिया था, ये ब्रह्मचारी गए उस टॉक शो में। अब ज्यादातर ये लोग सब स्कूल ड्रॉप आउट्स थे, और ये बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट जिन्होंने पीएचडी लिया है एनवायरमेंट में, साइंस में, इनके अगेंस्ट ये स्कूल ड्रॉप आउट एक ब्रह्मचारी, टॉक शो पूरे सिटी में दिखाया जा रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है। तो ये एनवायरमेंटलिस्ट वो टॉक शो में बोलता है कि यू विल बी डिस्ट्रॉइंग द ग्रीन कवर ऑफ दैट ग्राउंड बिकॉज ऑफ योर प्रोसेशन। तो ब्रह्मचारी बोलते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रास, द ग्रीन ग्रास? यस, द ग्रीन ग्रास। तो ये माइक पे बोले, एक्चुअली इट इज द ग्रीन ग्रास विच इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द एनवायरमेंट ऑफ दिस प्लैनेट। और वो इतना कॉन्फिडेंस से बोले कि वो मीडिएटर और वो एनवायरमेंटलिस्ट वो लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये ऐसे कैसे बोल सकता है। तो अब ये जो ब्रह्मचारी, इसने बचपन में सुना था, ये बचपन में इसने सुना था कि जो ग्रास है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, बाकी जो वृक्ष है वो उल्टा करते हैं, लेकिन ये घास जो है ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। तो इसने, इसको जब पूछा गया कि तुम ऐसे कैसे इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे, तो इसने ये कारण दिया, दैट ग्रास, ग्रीन ग्रास, व्हाट इट डज, इट इनहेल्स ऑक्सीजन एंड एक्सहेल्स कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंटलिस्ट थोड़ा हिल गया, वो बोला आर यू श्योर? तो बोलता है यू आर एनवायरमेंटलिस्ट, यू शुड नो। तो अभी उसके ऊपर वो ईगो इश्यू आ गया कि मेरे को सीधा चैलेंज कर रहा। तो पूरे टॉक शो में खाली ये एक कारण के वजह से हरे कृष्णा उसको परमिशन मिल गया वहां रथ यात्रा करने का। तो ये ब्रह्मचारी को जब पूछा गया तो इसने कहा मुझे कुछ एनवायरमेंट के बारे में मालूम नहीं है, मैंने खाली एक चीज वो बचपन में मेरे को किसी ने बताई थी वो मैंने रिपीट कर दी, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे एक बंबई के हमारे भक्त हैं, वो मुझे बता रहे थे कि कुछ एक आध साल पहले वो दादर पर जो हमारा स्टॉल लगता है दिसंबर के महीने में, तो वहाँ भगवत गीता वो बांट रहे थे। तो बहुत अजीबोगरीब किस्म के लोग भी आते रहते हैं, कईयों को कुछ लेना देना नहीं होता, बस देखते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो एक व्यक्ति वो स्टॉल पर आया तो वो देख रहा है इतनी सारी पुस्तकें, और वहां पर वो लोग माइक पे बोल रहे हैं भगवत गीता जशी आयत तशी, भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, ये वो, इतने कम नामों में 18 अध्याय 700 श्लोक, अपना जीवन सफल कीजिए, ये वो। तो एक व्यक्ति सब सुन रहा था, देख रहा था ऐसे। तो उसने ये ब्रह्मचारी को पूछा, तो आपने पढ़ी है कि नहीं, आपने जीवन सफल किया है कि नहीं? उसने कहा मतलब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जीवन मैंने पूरा बलिदान किया है इसके लिए। बोला ठीक है, मैं भगवत गीता लूंगा एक शर्त पर, मुझे बताओ पहला श्लोक कौन सा है आपकी गीता का, आपने पढ़ी है तो बताओ पहला श्लोक कौन सा है। तो माइक के ऊपर, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवास चैव। तो ये भी, तो इसने बोला अच्छा ठीक है बताओ आखिरी श्लोक कौन सा है। तो इन्होंने आखिरी श्लोक भी शुरू किया है,
संजय उवाच। तो ऐसे आखिरी श्लोक भी उन्होंने बोल दिया तो फिर ये आश्चर्यचकित हो गया, मैंने जो पूछा बराबर उसने चेक भी किया भगवद गीता के अंदर, और फिर उसने भगवद गीता ले ली। और फिर बाकी डिवोटी बोले वाह यार, तो उसने कहा देखो भैया मेरे को खाली यही दो श्लोक आते थे तो फॉर्चुनेटली कोइंसिडेंटली उसने जो दो श्लोक पूछे, इस ब्रह्मचारी ने नया नया ज्वाइन किया था इसको खाली वही दो श्लोक आते थे, लेकिन इतने कॉन्फिडेंटली उसने सुना दिया तो उसको लगा कि यार पहला आता है आखिरी आता मतलब बीच के तो सारे आते होंगे। तो एक चीज है कि भक्ति में आने के बाद हमको जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, एक ब्रह्मचारी वो बीएआरसी, आपको पता है बीएआरसी बॉम्बे में जहां साइंटिस्ट बड़े बड़े साइंटिस्ट वो एटॉमिक प्लांट में, तो बीएआरसी में वो जाकर साइंटिस्ट, और ये कुछ इनको साइंस का बैकग्राउंड नहीं, साइंटिस्ट को जाकर डार्विन थियरी बिग बैंग थियरी उसको ब्लास्ट कर रहे हैं उनके सामने, और वो लोग बड़े बड़े पीएचडी डबल पीएचडी साइंटिस्ट सुन रहे हैं। अच्छा डार्विन, अच्छा वो डार्विन जिसको हम पूछते हैं ये तो खात्मा कर रहे हैं उस डार्विन का, बिग बैंग थियरी का बैंग कर रहे हैं पूरा। तो खाली वो ब्रह्मचारी का कॉन्फिडेंस देख के ये सारे साइंटिस्ट बोले कि हो सकता है ये जो बोल रहा है इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। तो यहां परीक्षित महाराज ये कॉन्फिडेंस आता कहां से, ये है भगवान श्री कृष्ण का एक आश्वासन। तो जैसे ही परीक्षित महाराज को अपने राज्य में कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये तक्षक से मेरा जो इन्फ्लुएंशियल राज्य है वो मुझे बचाएगा, नहीं, परीक्षित महाराज का फेथ किसके ऊपर था, सुखदेव गोस्वामी। अब सुखदेव गोस्वामी उनकी एंट्री कैसे हुई थी, 16 वर्षीय सुखदेव गोस्वामी नग्न अवस्था में वहां पर एंट्री कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी के पीछे छोटे छोटे बच्चे और गांव वाले पत्थर मार रहे हैं, कंकड़ पत्थर मार रहे हैं, उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, जैसे कोई पागल व्यक्ति घूमता होता है तो बच्चे खिल्ली नहीं उड़ाते उनकी, तो वैसे सोचिए ओरिजिनल भागवत स्पीकर की एंट्री ऐसी हुई। हम लोग कई बार भागवत सप्ताह रखते हैं, भागवत सप्ताह इतना भारत में होता है, भागवत स्पीकर जो कथाकार है मानो हॉल के अंदर उसकी एंट्री ऐसे हो, बच्चे कंकड़ मार रहे हैं ये वो, ए पागल पागल पागल, और ऐसे वो व्यासासन पे आके बैठ रहे हैं तो कितने ऑडियंस बैठ के सुनेंगे फिर। लेकिन परीक्षित महाराज जान गए कि यदि मेरे अंदर तक्षक से लड़ने का साहस मुझे प्राप्त करना है तो वो यही व्यक्ति दे सकता है, तो उन्होंने सही प्लग में अपना वो डाला, प्लग पॉइंट में अपना सॉकेट, सही सॉकेट में उन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट डाला। तो ये परीक्षित महाराज का उदाहरण। फिर श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज का उदाहरण है। अब देखिए ध्रुव महाराज, उनके विषय में चतुर्थ स्कंध में बताया गया है कि उनकी भक्ति जो प्रारंभ की उन्होंने वो मोड ऑफ पैशन में थी, गुस्से में ना, गुस्से में निकले थे, वो गुस्से में निकले थे भगवान को ढूंढते हुए, तो बहुत पैशन था उनके अंदर। तो ध्रुव महाराज जो कि रजोगुण में उनकी भक्ति बताई गई, लेकिन जैसे ही वो भगवान के संपर्क में आए तो वो रजोगुण शुद्ध सत्व में परिणित हुआ। जैसे हम लोग भी भक्ति में अलग अलग गुणों के अधीन पहले थे और भक्ति में आए, और फिर भक्ति में आने के बाद फिर हमें समझ में आए कि हम जिस गुण में थे वो कितना निचला गुण था, और फिर हम फिर सत्व गुण और शुद्ध सत्व, वैसे ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज जो कि 5 वर्षीय और वो भी एक क्षत्रिय, वो कोई बचपन से ऐसे भगवान की भक्ति में लगे हुए ऐसा कहीं बताया नहीं गया, लेकिन जैसे ही ध्रुव महाराज के माथे पर भगवान ने अपना शंख स्पर्श किया तो फिर क्या हुआ, ध्रुव महाराज फ्रॉम मैटर गॉट कनेक्टेड टू स्पिरिट। और फिर ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं चतुर्थ स्कंध में हम पढ़ें तो ऐसी ऐसी सुंदर प्रार्थनाएं हैं उनकी। तो कैसे बोल पाए, क्योंकि कृष्ण कनेक्शन, भगवान का कनेक्शन उनका जो हुआ। इतना ही नहीं, चक्रवर्ती ठाकुर वो कहते हैं कि ध्रुव महाराज को अपना दर्शन भगवान दिए, गरुड़ पर आए थे, भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए थे और ध्रुव महाराज को दर्शन दिए, ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं सुनी, कृपा दी। और जब भगवान जा रहे थे तो गरुड़ जी वो भगवान से पूछे कि तो चलें, अब टेक ऑफ लें। तो भगवान ने कहा रुको थोड़ा। तो गरुड़ जी अपनी गर्दन पीछे किए देखने के लिए कि भगवान क्यों रुकने के लिए बोल रहे हैं। तो भगवान ने जो पादुका पहने हुए थे, भगवान ने अपने पादुका निकाली और जाते जाते, अभी गरुड़ जी जाए लेके जा रहे हैं भगवान को, जाते जाते भगवान ने अपने चरण ध्रुव महाराज के माथे को स्पर्श किया। और वो इसलिए क्योंकि भगवान जानते थे कि ये बात इनके पिता और इनकी सौतेली मां तक पहुंचने वाली है। कौन सी बात, कि ध्रुव महाराज के माथे पर, कल्पना कीजिए क्या कृपा ध्रुव महाराज को मिली कि भगवान ने गरुड़ जी को रुकने के लिए कहा और अपनी चप्पलें उतारी, ये नहीं कि चप्पल के साथ, हालांकि भगवान चप्पल के साथ भी स्पर्श करते तो भी उतना ही इफेक्ट होता, लेकिन भगवान ने अपनी चप्पलें उतारी और जो उनके वो नंगे पैर वो ध्रुव महाराज के माथे पर स्पर्श किया। तो जैसे ध्रुव महाराज अब वापस लौटे राज्य में तो उत्तानपाद वो भागते हुए ध्रुव महाराज को आलिंगन किए, इसलिए कि ध्रुव महाराज का वो कनेक्शन हुआ। और फिर सुरुचि वो ध्रुव महाराज को आलिंगन की। और फिर आगे चलकर चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि इस कनेक्शन के वजह से इवेंचुअली सुरुचि भी भगवत धाम को प्राप्त हुई। सुनीति के विषय में तो हम सब सुने हैं, इवन सुरुचि वेंट बैक होम बैक टू गॉड, जस्ट दैट रिमोट कनेक्शन विद ध्रुव महाराज। एंड वाई, बिकॉज ध्रुव महाराज गॉट हिमसेल्फ कनेक्टेड टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो दिस इज द ग्लोरी ऑफ कृष्णा कनेक्शन। चौथा उदाहरण वृत्रासुर का और इंद्र का यदि हम लें तो छठे स्कंद में वृत्रासुर की कथा है। अब ये एक असुर, इनका नाम ही वृत्रासुर, और एक तरफ है देवताओं के राजा देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र को स्वयं भगवान ने वज्र दिया था वृत्रासुर को मारने के लिए। He was personally given the thunderbolt weapon by the Supreme Lord to kill Vritrasura. तो सोचिए देवराज इंद्र का क्या strong connection होगा भगवान से कि भगवान ने personally वो thunderbolt दिया। लेकिन Vritrasura जिस तरीके से युद्ध कर रहे थे तो इंद्र उनके अंदर doubts आने लगे। क्या doubts आने लगे, भगवान ने मुझे ये वज्र तो दिया है लेकिन लगता है ये वज्र से ज्यादा शक्तिशाली लग रहा है वृत्रासुर। तो प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में, इन दिस सिचुएशन वृत्रासुर इज अ डेमीगॉड एंड इंद्रा इज एक्टिंग लाइक अ डीमन। व्हाई, बिकॉज ही वाज डाउटिंग कृष्णाज मर्सी अपॉन हिम, ही वाज डाउटिंग कृष्णाज कनेक्शन। तो वृत्रासुर वो इंद्र को बोलते हैं कि अरे इंद्र, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो बोलते ना, चुल्ली भर पानी में डूब मर इंद्र, कि तुम्हें स्वयं भगवान ने आदेश दिया है, निर्देश दिया है, उन्होंने भविष्यवाणी की है, उन्होंने वज्र दे दिया, उसके बावजूद तुम डाउट करते हो। अरे उठाओ तुम्हारा वज्र, चलाओ मेरे ऊपर, मारो मुझे। हालांकि उसमें वृत्रासुर का प्रयोजन यह था कि इंद्र मुझे मार देंगे तो मैं तो भगवत धाम जाने वाला हूं, वो तो फिक्स है, और इंद्र जीतने के बाद वापस अमरावती जाने वाले, जो कि इस भौतिक संसार में ही है। तो वृत्रासुर वो प्रेरित कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जब हमें भगवान कृपा प्राप्त होती है, जैसे कि हम अब हरे कृष्ण आंदोलन में हैं, तो कौन कहेगा कि उसको कृपा प्राप्त नहीं हुई है भगवान की? नो वन हु हैज कम इन कॉन्टैक्ट विथ हरे कृष्ण मूवमेंट कैन से दैट ही हैज नॉट रिसीव्ड द मर्सी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड डायरेक्टली, लाइक इंद्र। तो जय श्री राधा मदन गोपाल जी की। देखिए, बोलते ही भगवान की कृपा आ गई, तो कौन कह सकता है। लेकिन कई बार हम भी उस मोड़ में चले जाते हैं जैसे इंद्र चले गए। हमको भी हरे कृष्ण महामंत्र पर थोड़ा डाउट आता है कि पता नहीं ये हरे कृष्ण महामंत्र मुझे सही में भगवत धाम ले जाएगा कि नहीं। शुरुआत में तो हम शुरू कर देते क्योंकि इतने सारे लोग जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो चलो चलो करना चाहिए। फिर उसके बाद में जब एक आध साल, चार पांच साल बीतते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा अनर्थ और बाहर आ रहे हैं, तो वो एक स्टेज आता है जो कि इंद्र का स्टेज। इंद्र वॉज फाइटिंग विथ वृत्रासुर एंड सॉ वृत्रासुर टू बी मोर पावरफुल देन हिज स्ट्रेंथ। सिमिलरली वेन वी फाइट विथ अवर अनर्थस, वी फील द अनर्थस मोर पावरफुल देन अवर स्ट्रेंथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज द पॉइंट वी स्टार्ट डाउटिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। इंद्र वॉज डाउटिंग। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं अज्ञस्य अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा, कि जब कोई आत्मा या व्यक्ति जीव संशय से भर जाता है, विनश्यति, उसका विनाश निश्चित है। सो डाउट इन द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, वॉट इट लीड्स टू इज फेथलेसनेस इन कृष्णा। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? जब हम भगवान या कृष्ण भावनामृत पद्धति पर डाउट करते हैं, तो उसका नेक्स्ट स्टेज है कि हम भगवान पर अपना विश्वास उठा देते हैं, वी बिकम फेथलेस फॉर कृष्ण। लेकिन इतना ही काफी नहीं रह जाता, उसके साथ along with being faithless in Krishna consciousness or in Krishna, we become faithful in Maya. Because we have to put faith in someone. Simultaneously, faithlessness in Krishna is directly proportionate to faithfulness in Maya. And when we are faithful to Maya, then we become dependent on the material support. इसलिए जब हमारी साधना भक्ति में जो तकलीफ आती है और जब हम भौतिक सपोर्ट का सहारा लेते हैं, जैसे एक वृंदावन में मैं कुछ समय था, तो वहां पर एक ब्रह्मचारी, मैं अक्सर रोज उनसे मिलता था, और वो ऐसे ब्रह्मचारी थे, खाली वो बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, और पिछले 10 साल से वो वृंदावन में, वहां पर दीक्षा नहीं हुई थी उनकी, तो मैंने उनको पूछा कि आप इतने 10 साल से यहां पर साधना सेवा कर रहे हो, तो आप दीक्षा क्यों नहीं लिए? तो उन्होंने कहा कि मैं अब तक लायक नहीं बना हूं, पता नहीं जन्म में मैं लायक बनूंगा क्या दीक्षा लेने का। तो मैं रोज उनसे मिलता था। अब देखिए, ये इनका कॉन्शियसनेस कि पता नहीं मैं लायक बनूंगा क्या दीक्षा लेने का। और कई बार हम लोग देखते हैं, मुझे क्यों नहीं दी दीक्षा, कितने साल से कर रहा हूं, मेरे को दीक्षा क्यों नहीं देते। एक ये कॉन्शियसनेस होता है कि मुझे दीक्षा क्यों नहीं देते। तो ये एक दिन मुझे याद है कि बहुत ये मायूस से दिख रहे थे। हर दिन वो बहुत एंथुजियास्टिकली सेवा करते दिखते मुझे, एक दिन थोड़े मायूस से दिख रहे थे। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ आज इतने मायूस कैसे? अब देखिए, हमारी मायूसी क्या होती है और इनकी मायूसी देखिए। हमारी मायूसी, आज प्रसाद नहीं मिला, जो भी, मेरे अनुसार मेरे को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, पेट साफ नहीं हुआ। मेरे को इतनी सेवा दे दी, 16 माला भी पूरा नहीं कर पा रहा हूं। ये सब हमारी मायूसी होती। ये ब्रह्मचारी, इन्होंने कहा कि आज मैं जब टेंपल हॉल साफ कर रहा था, कृष्ण बलराम मंदिर, तो मैं फिसल गया मार्बल पे। तो मुझे लगा कि कहीं लग गई होगी शायद, इसलिए मैंने कहा कहीं लग गई। बोले नहीं, मैं फिसला और फिसलते समय मैंने भगवान कृष्ण को याद नहीं किया। मैंने कहा अच्छा, तो मैं अब ये स्टैंडर्ड सुन के मैं मायूस हो रहा था। मैं अपने आप को सोच के कि ये बोल रहे हैं कि वो समय, वो बोल रहे, बहुत डीप रियलाइजेशन था उनका। उन्होंने बोला कि वो जो 30 सेकंड मैं वो फिसल रहा था, तो मेरा जीवन का अंत भी हो सकता था। तो भगवान ने मेरे को टेस्ट किया कि मैं फिसला, भगवान मेरे को टेस्ट कर रहे कि तू मेरे को याद करता है कि नहीं उस टाइम पे, और मैं फेल हो गया उस टेस्ट में। और उसके वजह से, और ये ऐसा नहीं कि वो उसका ढिंडोरा पीट रहे हैं कि देखो मेरा क्या रियलाइजेशन है। मैंने पूछा, मैंने देखा कि दिन भर थोड़े मायूस से लग रहे हैं, तो मैंने पूछा। पूछने के बाद फिर उन्होंने बताया कि नम्रता देखिए। फिर तो ये उनका स्टैंडर्ड। तो हम लोग यहां पे इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि हम, हमारे जीवन में तकलीफ आती है तो हम किसका सहारा लेते हैं। कई बार हम ऐसे ही फिसल जाते हैं तो आई उई ये सब निकलता हमारे मुंह से, और कुछ भी हो जाए तो भौतिक सहारे हमारे सारे पहले से ही रेडी रखते हैं, और फिर लास्ट में हम फिर किसी को बोलते, प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करना, आप करना, मैं तो अपना भौतिक अरेंजमेंट्स कर लिया हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहो। ये नहीं कि हमको भी अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये सीक्वेंस है। डाउट इन द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस लीड्स टू फेथलेसनेस इन कृष्णा, विच लीड्स टू फेथफुलनेस इन माया, डिपेंडेंस ऑन मटीरियल सपोर्ट्स, और सबसे डेंजरस इसके बाद क्या होता है कि माया देवी जो सपोर्ट सिस्टम्स देती है हमको, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो कृष्ण भक्ति में डाउट और कॉन्फिडेंट हमारा होता है, मतलब पक्का होता है। एंड दैट इज द स्टेज व्हेन वी स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम डिवोटीज एसोसिएशन, क्योंकि फिर हमको धीरे धीरे लगता है कि यहां पर कुछ नहीं होने वाला है, असली जो प्रैक्टिकल लाइफ है, रियल वर्ल्ड, वो बाहर है। यहां पे खाली प्रवचनों में लोग बोलते हैं, रियली कुछ नहीं होता है। then we start having more faith in Maya, more doubt in Krishna, more faith in Maya. इसलिए भगवान कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति, फिर उसका विनाश निश्चित है. तो एक आध महीने पहले मैं बंबई गया था, तो वहां पर मैं जिनके लिए प्रोग्राम कर रहा था तो उनके लिए मैंने प्रसाद बनाया. तो एक मैं स्वीट राइस बना रहा था उनके लिए, तो स्वीट राइस बनाते समय मैं वो स्वीट राइस के कुकिंग के प्रोसीजर पर गौर कर रहा था. तो एक दो पैसे का रियलाइजेशन आया स्वीट राइस बनाते समय कि हम लोग भी वो जो चावल है ना जिसमें जिसको यूज करते हैं स्वीट राइस बनाने के लिए या दूध या जो भी इंग्रेडिएंट्स, हम लोग उसके समान है. तो स्वीट राइस या खीर जब हम बनाते हैं तो चावल जब हम लेते हैं तो चावल कितना कड़क रहता है, ऐसे ही नहीं खा सकते उसको. अगर कोई दे चलो एक ग्लास में दूध दे दिया और एक ग्लास में कच्चा चावल दे दिया, लो स्वीट राइस नहीं. वो जो कच्चा चावल है और कच्चा दूध है उसको अग्नि के संपर्क में आना पड़ेगा, है कि नहीं. तो ये जो हमारी साधना भक्ति है वो क्या है, अग्नि के समान है. और हम लोग क्या है, कच्चा चावल है. भी कच्चा चावल कुछ उसके अंदर कोई खा नहीं सकता उसे. तो जब हम अपने आप को उस दूध में डाल के अग्नि नीचे वो साधना भक्ति की अग्नि में जलाते हैं तब धीरे धीरे क्या होता है, चावल पकना शुरू होता है ना. तो जैसे हम साधना में लगते हैं तो धीरे धीरे हम पक्के होना शुरू होते हैं, है ना. एक है पक्के होना और एक है पक जाना. हमारी स्थिति क्या होती है, पक जाते हैं हम ज्यादा. तो फिर मैं ये सोच रहा था कि हाँ ठीक है, हम माला कर रहे हैं, साधना भक्ति में लग गए, गैस भी ऑन कर दिया है ना, नीचे से ऑन है, दूध उबल रहा है, चावल भी पक रहे हैं, क्या इतना ही काफी है? नहीं, वहां पर कॉन्स्टेंटली एक कुक होता है जो स्टरिंग करता रहता है. तो हमारी साधना आग चालू है नीचे, लेकिन किसके गाइडेंस में हम कर रहे हैं, कुक होना चाहिए वहां पे. तो कुक कौन है, वो गुरु. तो गुरु जानते हैं कि वो कितना फायर होना चाहिए उसका, ज्यादा बढ़ा दो तो स्वीट राइस जल जाएगा, कम कर दो तो चावल कच्चा रहेगा, है ना. तो गुरु जानते हैं कि कितना फायर मेंटेन रखना है और वो कॉन्स्टेंटली उसको हिलाते रहते. और जब गुरु उसको हिलाते हैं, देखते हैं कि हाँ अब ये स्वीट राइस पकड़ रहा है, जो टेक्सचर पकड़ रहा है, फिर गुरु उसके अंदर डालते हैं काजू बादाम पिस्ता ये सब कुछ. तो फिर वो हमको सेवा देते हैं, अलग अलग स्किल्स हम हासिल करते हैं और फिर जो एक्चुअल स्वीट राइस का फ्रेग्रेंस है वो बाहर आने लगता है, तब वो स्वीट राइस का फ्रेग्रेंस बाहर आने लगता है. तो साधना भक्ति गुरु के निर्देशन में करने के बाद बहुत समय पश्चात फिर ये जो दिव्य गुण हैं भक्ति के वो बाहर आने लगते हैं. लेकिन यहां तक हमको संतुष्ट नहीं रह जाना चाहिए ऑफरिंग, जब तक कि वो स्वीट राइस भगवान को ऑफर नहीं होता, तुलसी दल उसके अंदर नहीं जाता, तब तक एक्चुअली स्वीटनेस उसके अंदर नहीं है. तो गुरु वो सब मिलके वो करते क्या है, फाइनली दे ऑफर इट टू कृष्णा. तो जब ये सब साधना भक्ति गुरु का संपर्क और दिव्य गुण ये सब आने के पश्चात जब हम अर्पित होते हैं भगवान को और भगवान जब उसको चख लेते हैं उसके पश्चात फिर जब भक्त वो स्वीट राइस को चखते हैं तब उनको लगता है कि हाँ ये है एक्चुअल रिजल्ट ऑफ पासिंग थ्रू द फायर ऑफ साधना भक्ति. तो कृष्ण भक्ति में हमको ये देखना है कि हर एक क्षण हमारा फ्लो कैसा जा रहा है भक्ति के अंदर. इसलिए श्रीमद् भागवत में एक सुंदर उदाहरण दिया है, मेरे ख्याल से शायद सातवें स्कंद में ये उदाहरण शहद का दिया है, हनी का, कि एक जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी चेतना भगवान के प्रति ये शहद के समान होती है. आपने कभी देखा शहद हम जब अभिषेक में भगवान के ऊपर डालते हैं तो कैसे वो फ्लॉलेस स्ट्रीम आता है उसका, है ना. तो एक शुद्ध भक्त की चेतना भगवान के प्रति उस शहद की धारा के समान होनी चाहिए, अनब्रोकन फ्लॉलेस. जैसे हमारा ये फाउंटेन है ना, चालू करते कैसे उसमें पानी कम हो जाता है तो फिर अटकना शुरू होता है वो, है ना. लेकिन पानी पूरा भरा हुआ था तो कैसे वो फ्लॉलेस वाटर शीट बहता है. तो शहद का एग्जाम्पल दिया है कि हमारा कॉन्शियसनेस साधना भक्ति में वैसा होना चाहिए. लेकिन कई बार होता क्या है, हमारे कॉन्शियसनेस म्युनिसिपैलिटी का नल होता है ना. शहद छोड़ दीजिए, म्युनिसिपैलिटी का नल आप लोग सब लोग एक्सपीरियंस किए होंगे. उसको चालू करो बहुत आवाज निकालो ऐसा लगता है कि अभी बाढ़ आने वाली वहां से. तो उसको चालू करो ऐसा बांसुरी बजाना शुरू करेगा पहले वो नल, ऐसा आवाज आएगा जोर से. फिर आप अपना सब बाल्टी वाल्टी रखो नीचे, फिर देखो 5 मिनट बाद टुम एक ड्रॉप गिरेगा, खाली टुप एक ड्रॉप गिरेगा, एक ड्रॉप गिरेगा. इतना आवाज किया एक ड्रॉप गिरा, फिर ऐसे पतली सी धारा कर पतली सी धारा गिरेगी. फिर आप सोचोगे कि अरे छोड़ो कहाँ बाल्टी, कितने समय में कौन से युग में भरेगी अभी ये बाल्टी. और जैसे ही आप ये सोचते हो कि कौन से युग में बाल्टी भरेगी, हुर्र इतना पानी आता है, फिर अचानक इतना पानी आएगा, फिर आप एकदम उतावले हो जाएंगे, अरे लगा लगा बाल्टी. जैसे वापस लेके बाल्टी लेके भाग के आए वो इतना पानी वापस फुर्र इतना सा वो धारा बह रही है वापस. तो कई बार हमारी भक्ति भी ऐसे ही है, कोई प्रोग्राम हुआ फंक्शन हुआ राधा मदन गोपाल का अपीयरेंस, जोर जोर से इतना बाढ़ आया और उसके बाद में एक साल तक दिखाई नहीं दे रहे. और कई बार हम आते हैं वो आवाज बहुत करते हैं, वो नल में से आवाज बहुत आती है लेकिन पानी कुछ नहीं है. तो हमारी स्थिति वैसी है. तो वो सातवें स्कंद में उदाहरण दिया गया कि वो शहद की तरह वो हमारी चेतना होनी चाहिए. और फिर पांचवा उदाहरण अजामिल का. अजामिल की क्या मतलब, माया तो छोड़ दीजिए, वो तो पाप कर्म में लगा हुआ था, ऐसे ऐसे गर्हित कर्म ऐसे ऐसे पाप कृत्य में लगा हुआ अजामिल. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर टीका लिखे हैं अजामिल का जो प्रसंग है उसके ऊपर. वो लिखते हैं कि अजामिल पहले उसने ब्राह्मण के नियम पालन किए, उसमें भगवान की भक्ति भी उसने की, और फिर उसने अपने उसका जो आखिरी पुत्र था अजामिल का उसका नाम नारायण रखा. हम सब कथा जानते हैं. तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिस दिन उसने नारायण नाम रखा था अपने पुत्र का, उस दिन से वो नारायण पुकारता था उसे. लेकिन विष्णु दूत पहले क्यों नहीं आए, ये क्वेश्चन हो सकता है ना, कि विष्णु दूत पहले क्यों नहीं आए. अब अंतिम समय जब मृत शैया पर वो लेटा हुआ तब विष्णु दूत क्यों आए. तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि पहले जो उसने नारायण नाम लिया उसके अंदर वो इंटेंसिटी नहीं था, लेकिन मृत शैया पर जब यमदूत को देखा, किसने? अजामिल ने, तो यमदूत को देखने के बाद उसके अंदर जो इंटेंसिटी से उसने नारायण बुलाया, तब विष्णुदूत आए, और विष्णुदूत को भगवान नारायण ने भेजा। भगवान नारायण विष्णुदूत को रेडी रखे थे, इसका इंटेंसिटी जैसी आएगा तुरंत जाओ। तो अब विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि उसी प्रकार से हमारी साधना भक्ति में भगवान हमको जब दुख देते हैं तो वो यमदूत के दर्शन के समान है। तो ये समझना चाहिए कि वो क्यों दिए हैं यमदूत जैसे दुख, ताकि हमारे साधना में वो इंटेंसिटी जागृत हो, हमारे चैंटिंग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जयदेव महाराज को एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र को इतना जोर जोर से बोलने की क्या जरूरत है। तो जयदेव महाराज ने एक उदाहरण दिया कि अगर आप रास्ते पर चल रहे हो और आपका कोई गला पकड़ ले, चाकू दिखाए, तो आप हेल्प किस वॉल्यूम में चिल्लाओगे? अंधेरी रात है और कोई आसपास नहीं है और कोई आपका गला पकड़ ले, चाकू दिखाया है, बटवा निकालो, तो आप ऐसे बोलोगे हेल्प? वो ऐसे बोल के बताए जयदेव महाराज, आप जोर से चिल्लाओगे ताकि लोग सुन सके और आपकी हेल्प पर आ सके। तो चक्रवर्ती ठाकुर भी यही बोल रहे हैं कि हमारे साधना भक्ति में जब भगवान हमें कोई अवरोध डालते हैं या परेशानी डालते हैं, तो भगवान इसलिए डालते हैं जैसे कि यमदूत को जब भेजा यमराज ने, तो यमदूत को देखने के बाद, और देखिए अजामिल की स्थिति, एक तरफ यमदूत एक तरफ विष्णुदूत, दोनों का वार्तालाप चल रहा है कि कौन लेकर जाएगा। तो वैसे ही हमारी साधना भक्ति में भगवान दोनों दिखाते हैं, हमारे अनर्थ और भगवान की कृपा, अनर्थ यमदूत और विष्णुदूत दोनों दिखाते हैं, और उससे हमें सीख लेना चाहिए कि हम एक बार नारायण नाम लिए और इतनी सी बार नारायण नाम लिए और विष्णुदूत हमें बचाने के लिए आए, तो सोचिए कि फिर किम होत। अजामिल के विषय में भी ये कैमुत के न्याय कहा गया है, म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो प्यगात नाम किम उत श्रद्धया गृणन। कि अजामिल ने तो अपने पुत्र को पुकारा मरते समय, वो पापी अजामिल, लेकिन अगर कोई श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है तो फिर क्यों नहीं। तो चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं बहुत अच्छा कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज लाइक क्लाइंबिंग अ लैडर, सीढ़ी चढ़ने के समान। तो वो कहते हैं जब आप सीढ़ी चढ़ते हो तो एक एक जो उसका पद आता है, रंग्स जो आते हैं ना, तो कहते हैं एवरी स्टेप ऑफ दिस लैडर इज अ डिजास्टर, एवरी स्टेप इज अ डिजास्टर। व्हाई? सो दैट यू डोंट रिमेन ऑन दैट स्टेप। बहुत ही सुंदर पॉइंट है उनका। कृष्णा ही हैज क्रिएटेड दिस लैडर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस विथ एवरी स्टेप एज अ डिजास्टर, सो दैट यू डोंट सेटल ऑन दैट स्टेप। दैट इज वन पॉइंट। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज अ बिगर डिजास्टर देन द प्रीवियस स्टेप। And the third point is, you cannot climb down once you have started climbing. तो सोचो, भगवान चित भी अपनी पट भी अपनी, कुछ नहीं कर सकते, चलते रहना, ऊपर चलते रहना, ऊपर चलते रहना। You cannot settle on one step, the other step is bigger disaster, you cannot climb down, you have to keep climbing up, up, up. जैसे कई बार आप देखो, कोई सीढ़ी जिसके ऊपर कोई अगर कांटे कांटे रख दे, तो आप कितने समय उसके ऊपर अपना पैर रखोगे? तुरंत ऊपर जाओगे ना? तो कोई पूछे कि भाई देन हाउ कैन यू से दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड बी हैप्पी, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, सो हाउ कैन आई बी हैप्पी देन इफ एवरी स्टेप इज अ डिजास्टर. सो व्हाट इज द हैप्पीनेस? ही सेज द हैप्पीनेस इज knowing the fact that the ladder is resting on the right wall. Every step will be disaster, lekin wo sahi diwar par wo seedhi rakhi hui hai. Aur jo bhautiktavadi log hain unki seedhi kaisi hai, ekdam uske upar makhmali velvet lagaya gaya hai ek ek step ke upar, but it is resting on the wrong wall. तो चाहे कितने भी इत्मीनान से वो सीढ़ियां चढ़ते रहे, एंड में क्या पता लगेगा उनको, ऐ तेरी तो ये तो गलत दीवार पर सीढ़ी लगाई गई थी. सो द एश्योरेंस दैट द लैडर ऑफ माय कृष्ण कॉन्शियसनेस इज रेस्टिंग ऑन द राइट वॉल इज द एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस. बहुत सुंदर पॉइंट है ये चक्रवर्ती ठाकुर का. इसलिए राधानाथ महाराज ने एक प्रवचन दिया था, ट्यूनिंग इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कृष्णा. जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो में कितने सारी फ्रीक्वेंसी चल रहे हैं, आप एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन करें तो आपको वो प्रोग्राम सुनाई देगा. तो वैसे ही राधानाथ महाराज ने पूरा एक लेक्चर दिया था कि माया देवी और कृष्ण अलग अलग फ्रीक्वेंसीज चल रहे हैं और आपके पास आपका कॉन्शियसनेस इंस्ट्रूमेंट है वो रेडियो, आप बराबर उसको कहां ट्यून इन करते हैं. कई बार आजकल आप देखोगे कि हमारे जो यात्रा वगैरह होते हैं उसके अंदर ये FM सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई डिवोटीज एक्सपीरियंस करते हैं, FM लेके जाते हैं, 103 पे लेक्चर चल रहा है, थोड़ा सा हिल गया तो गाने शुरू. और कई बार हमको, अरे मेरा पसंदीदा गाना आ रहा है, ये लेक्चर तो बहुत बार सुना है, पहले इसको सुन लेता हूं, तो थोड़ा सा वो ट्यूनिंग इधर उधर हो गया तो कुछ और चालू हो जाता है कुछ और. तो महाराज बोल रहे थे वैसे ही हमारी स्थिति इस संसार में ऐसा है, थोड़ा सा यहां वहां इनअटेंशन, फ्रीक्वेंसी चेंज, रेडियो स्टेशन चेंज, प्रोग्राम चेंज, मतलब पूरा लैडर हमारा दूसरे दीवार पर चला गया. तो इसलिए भगवान हमको जब अलग अलग प्रकार से टेस्ट करते हैं तो यह समझना चाहिए कि भगवान ने वो जो कृपा है उसको पैक करके रखा हुआ है अपने पास हमको देने के. हमको ही देने वाले हैं, हमारे नाम से ही वो पैकेज है, एड्रेस टू अस पर्सनली. लेकिन भगवान खाली वेट कर रहे हैं कि ये मेरे जो दिए हुए टेस्ट हैं उसके अंदर क्वालिफाई होता है कि नहीं होता है. क्यों भगवान ये कर रहे हैं? ताकि जब हम आध्यात्मिक संसार में जाएं सो वी शुड बी प्रेजेंटेबल एज डिवोटीज ऑफ कृष्णा. जैसे मान लो कई बार हम किसी नए व्यक्ति को लाते हैं मंदिर में, तो हमको कितना एश्योरेंस रहता है कि मंदिर में लाएंगे, भगवान को देखेंगे तो वो कितना खुश होगा, प्रसाद खाएगा कितना खुश होगा. तो हमको कितना कॉन्फिडेंस डीटीज के ऊपर है, कितना कॉन्फिडेंस हमको प्रसाद के ऊपर है. गीता कोर्स के लिए किसी को लेके आते हो, बोलते हैं, कितना बोलते हैं गीता कोर्स में, ये आपको सुनने मिलेगा, ये देखने मिलेगा, आपका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो. क्यों? क्योंकि जानते हैं कि नरसिंह कृपा प्रभु दे रहे हैं गीता कोर्स, तो है ना, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं. तो मान लो हम लेके आए उसको, इतना सब कुछ बोल बाल के उसको रजिस्टर करा के लेके आए, बोला ठीक है इतना बोला है जाके देखते हैं, और फिर पता लगे कि कोई दूसरा ही स्पीकर है, तो हमको फिर अंदर कैसे लगेगा, अरे मैंने तो इतना उसको फुग्गा फुला के लेके आया था. और फिर अगर फ्लॉप शो हो गया, मान लो कि कोई ऐसा स्पीकर वो साईं बाबा का कुछ शुरू कर दिया बोलना, या कुछ गीता कोर्स में और कुछ बोलना शुरू कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा कि मैं जिसको लेके आया इतना बोल बाल के, यहां पे तो सुपर फ्लॉप शो चल रहा है. तो वैसे ही भगवान को भी लगता है कि ये मेरी भक्ति में आया और मैं आध्यात्मिक संसार में सबको बोल रहा हूं कि कि ये शिक्षाष्टकम दास भक्ति में आया है, ये भक्ति में लगा हुआ है इतने सालों से, ये आने वाला है भगवत धाम, और फिर भगवान देखते साला सुपर फ्लॉप किया मेरे को इसने. सो हाउ विल कृष्णा फील व्हेन वी लेट हिम डाउन, जस्ट लाइक हाउ वी फील व्हेन वी ब्रिंग समवन टू द टेम्पल एंड वी फाइंड दैट द होल एक्सपीरियंस वॉज अ फ्लॉप. तो वही हमको समझना चाहिए, भगवान इतना क्यों टेस्ट करते, क्यों परखते, ताकि हम जब उधर जाएं भगवत धाम में तो हम उस लायकी के बने. वी शुड बी डिजर्विंग कैंडिडेट. एक लास्ट आपको मैं, राधा गोविंद महाराज ने एक हाउ ही केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, बहुत सुंदर स्टोरी उन्होंने एक बार सुनाई थी मुझे. तो वो पहली दफा श्रील प्रभुपाद को प्रयाग में मिले, मतलब देखा खाली उन्होंने प्रयाग में, और फिर वहां से वो गोरखपुर आए. तो उस समय श्रील प्रभुपाद भी गोरखपुर में थे, तो इन्होंने खाली कुछ समय के लिए प्रभुपाद को देखा था, तो इनको ध्यान में नहीं था कि प्रभुपाद कैसे दिखते हैं. तो गोरखपुर में जब राधा गोविंद महाराज आए तो प्रभुपाद बाहर ही बैठे हुए थे, जहां पे उन सेंटर था उधर बाहर थे. तो इनको लगा कि कोई ऐसे ही इस्कॉन के कोई डिवोटी बैठे हैं, प्रभुपाद बैठे थे. तो वो गए और पूछे कि कहाँ हैं आपके स्वामी जी, कहाँ हैं? तो प्रभुपाद समझ गए, तो प्रभुपाद किए मुझसे मिलने आए. प्रभुपाद ने क्यों मिलना है आपको उनसे? नहीं, मुझे कृष्ण भक्ति के बारे में जानना है. बोले कि क्यों आपको कृष्ण भक्ति के बारे में यहीं इस्कॉन में ही जानना है? प्रभुपाद अब टेस्ट कर रहे थे, क्यों इस्कॉन में, क्यों कृष्ण भक्ति तो कहीं पर भी आप जान सकते. उन्होंने कहा नहीं, मैंने सुना है कि चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण प्रेम दिए हैं तो इस्कॉन उसका प्रचार करते. तो प्रभुपाद पूछते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो राधा गोविंद महाराज, क्योंकि वो पहले से इतना पढ़े लिखे थे शास्त्र में, शास्त्र के ज्ञाता थे, तो उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात कृष्ण है. कुछ भी बोलते हो, प्रभुपाद बोल रहे हैं भी. किसने कहा चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है? तो राधा गोविंद महाराज थोड़ा उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ आता जाता तो है नहीं, आप अपने स्वामी जी को बुलाओ इधर. तो प्रभुपाद जोर जोर से हंसने लगे और प्रभुपाद बोले यस यू आर क्वालिफाइड टू टेक सन्यास राइट नाउ. तब सोचो प्रभुपाद उनको किस हद तक टेस्ट किए, और राधा गोविंद महाराज बोले कि तुम दूर हटो, तुम्हारे स्वामी जी को बुलाओ. तो उनका कॉन्फिडेंस देखो कि यहां तक कि प्रभुपाद उनको ये कहे और कुछ झुटलाने के लिए बोले, लेकिन उन्होंने वो टस से मस नहीं हुए. तो उसी प्रकार से हमारे आचार्य बोलते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण भी आकर बोल दें कि तुम जो हरे कृष्णा कर रहे हो, इतनी भक्ति कर रहे हो, मंगल आरती साधना सोलह माला, कुछ नहीं होने वाला है, कोई होप नहीं है. अगर भगवान भी आकर बोल दें तो भी भक्त का कॉन्फिडेंस इतना है कि वो छोड़ेगा नहीं भगवान की भक्ति, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. और ये आज का जो श्लोक हमने लिया कि पूतना जैसी डायन राक्षसी जो भगवान को मारने आई, अगर पूतना का उद्धार इस हद तक हो सकता है तो फिर हमें बिल्कुल भी भक्ति में मायूस नहीं होना चाहिए या होपलेस नहीं बनना चाहिए. इनफैक्ट कृष्णा इज रीअश्योरिंग अवर होप एंड अवर कॉन्फिडेंस दैट इफ पूतना कैन बी देन व्हाई नॉट यू. पूतना नेवर चैंटेड हरे कृष्णा, नेवर अटेंडेड एनी मॉर्निंग प्रोग्राम, नेवर ड्रैंक एनी चरणामृत, ओनली ड्रिंकिंग ब्लड. ये पूतना जिसने कोई माला नहीं किया, कुछ नहीं किया अपने जीवन में, उसे भगवान ने ऐसी सदगति दे दी, तो व्हाई नॉट दोज सिंसियर डिवोटीज who are sincerely trying to please Krishna. That is the sum and substance of Krishna consciousness. Hare Krishna. Kisi ka koi prashna?
हरे कृष्ण प्रभुजी, थैंक यू वेरी मच प्रभुजी. इसके इस श्लोक के ट्रांसलेशन में बताया गया है कि पुतना प्रेम पूर्वक भगवान को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो वो प्रेम पूर्वक शब्द समझ में नहीं आया प्रभुजी, एक्चुअली किस प्रकार से समझें उसको?
नहीं, प्रेम पूर्वक का अर्थ है उसका ट्रांस जो पर्पट है, पर्पट में ये लिखा गया है कि वो प्रेम पूर्वक दूध पिलाने का नाटक कर रही थी. आप परपट पढ़ोगे ना तो परपट में लिखा है कि यशोदा और रोहिणी ये दोनों पूतना ने जो कपट प्रस्तुत किया उससे भ्रमित हो गई थी. तो पूतना ऐसा कपटी बन के आई थी कि जैसे एक माता प्रेम पूर्वक स्तनपान कराती है, तो वो प्रेम का भी नाटक कर रही थी वो. तो हालांकि उसका सब कुछ कपट ही था, उसका स्तनपान कराना एक ही चीज सच्ची थी कि भगवान को मारने आई थी, जो उसने छिपा के रखा. लेकिन भगवान की कृपा यही दिखाया जाए कि भगवान ने उसके नाटकीय प्रेम को भी सही प्रेम माना. ये उसके नाटकीय प्रेम को भी सही प्रेम माना और फिर सही प्रेम दिया उसको. तो उसका अर्थ ये है. तो ये जो प्रसंग है पूतना का, इसमें ये जो जितने सुखदेव गोस्वामी ये पूतना का एपिसोड बहुत इलैबोरेटली सुना रहे हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था पूतना के श्लोक सुन के. इसलिए होता है ना, जो हम लोग भक्ति में जिस कारण के वजह से आते हैं हम उसको बहुत स्ट्रांगली प्रचार करते हैं. तो इसलिए बाकी असुरों का इतना इलैबोरेटली सुखदेव गोस्वामी ने नहीं सुना, लेकिन पूतना का बहुत इलैबोरेटली सुना है, क्योंकि वो खुद ट्रांसफॉर्म हुए थे पूतना के श्लोक को सुनकर. तो इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं तो भगवान के मनोभाव को प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान ने पूतना का जो स्तनपान लिया वो ये समझते हुए लिया कि पूतना प्रेम पूर्वक. इसलिए भगवान आंख बंद कर लिए ना, निमिली ते क्षण. आंख बंद इसलिए कर लिए कि भगवान बोले कि मेरे को इसका कपट नहीं देखना है, क्योंकि मैं अगर इसका कपट देख लूंगा तो मैं अपनी कृपा नहीं दे पाऊंगा. तो क्या देखूंगा? अच्छा ही देखूंगा. जो भी कुछ, अगर वो नाटक भी कर रही है प्रेम से दूध पिलाने का, तो वो मैं देखूंगा.
हरे कृष्ण प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज व्हेन लॉर्ड हैज गिवन मर्सी टू पूतना लाइक डीमन, व्हाई डिड ही गिव अ वेरी शॉर्ट association to his birth giving mother?
Not short association. Later on he went to Dwarka na? And he stayed in Dwarka. Devki na? You are asking about Devki.
Yeah, Devki.
Yeah, so he gave, you know, in fact, you know, this famous deity of Laddu Gopal, Krishna took the form of Laddu Gopal to show. In fact, he was 100 plus, but he took the form of the little baby of Devaki and drank Devaki's breast milk later on when he went, just to give all of his association as a small child and that form of Laddu Gopal. So he did. That's one reason. Not reason, but he did give his association. What we can understand is that Devaki was already eternal associate of Krishna. And when Krishna comes in this material world, the eternal associates, you know, like conditioned souls are like the audience. So the eternal associates, they play their role to help the conditioned souls get attracted to Krishna. So if, you know, Krishna would have decided, okay, I'll just have all my pastimes with Vasudeva and Devaki, you know, in Mathura and other places, then the purpose for which he has come to this material world will not be solved to redeem these demons. And that is the reason, forget about Devaki, that is the reason he left Brajbasis, Radharani. He only stayed 11 years in Vrindavan. And he left them. Why? So that he can fulfill the mission for which he had come. No. It's like, you know, Prabhupada, initially when he was preaching, he gave time to so many hippies. But when they were convinced and they became his disciples, then Prabhupada would be traveling all over to redeem the conditioned souls. Because he knew that they are now established devotees. But I need to give my association to so many others who require it. So staying with Devaki would be like sense gratification for Krishna. And going out of that association to redeem demons like Putana was like preaching. Was like giving his mercy to so many. That is.
Hare Krishna. Ki jo samshayatma vinashyati aapne kaha Prabhu ji. कि भगवान के कृपा में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो छोटे छोटे समस्या भी हमारे जीवन में बड़ा प्रॉब्लम कर सकती है और अगर बड़ी से बड़ी समस्या हमारे जीवन में क्यों नहीं आंतरिक या बाहर से अगर भक्ति में हमें कॉन्फिडेंस है तो हमें कुछ नहीं कर सकती वो तो अभी हम जब भक्ति करते हैं तो क्योंकि माया का इस प्रकार से आवरण होता है या इस प्रकार से संग होता है हमारा कि वो जो थोड़ा बहुत हम सुनते जो कॉन्फिडेंस जमा करते हैं वो ढक लिया जाता है और जब कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर वी फॉरगॉट दैट यू दिस इज द पावर ऑफ भक्ति. It might be very silly thing like, you know, kuch bhi chota problem ho gaya, toh we forgot that. Aur phir hum humari seva jis quality se karne chahiye, jis had se hum jo seva karne, jis quality se seva karna chahiye, wo nahi kar paate. So how to see that our confidence level in Krishna and the process of Krishna increased by every moment?
Dekhiye, samshayatma ka arth ye hai, जैसे श्रील प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल से इसको समझाया. जदुरानी माता जी, उन्होंने प्रभुपाद को पूछा कि एक भक्त जब भक्ति में लगता है, चाहे वो नौसिख्या हो या शुद्ध हो, क्या वो भौतिक संसार की तकलीफों से अफेक्ट होता है कि नहीं होता. जैसे आपका ये प्रश्न है कि साधना भक्ति में जब हम अफेक्ट हो जाते हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि जब आप नाव में बैठे हो और वो नाव किसी सरोवर में है या नदी में है, तो जो लहरें हैं उस नदी की और उस सरोवर की, वो नाव को हिला रही हैं, है ना. और क्योंकि आप नाव में बैठे तो आप भी हिल रहे हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अरे क्या फायदा फिर ये नाव में बैठ के, मैं भी हिल रहा हूं. क्योंकि वो नाव वो नदी में है और नदी की लहरें कभी रुकने नहीं वाली, तो थोड़ी तो नाव हिलेगी, उसकी वजह से आप भी हिलोगे. लेकिन आपको गौर किस पे करना है कि पानी अंदर नहीं आना चाहिए. आप हिलोगे लेकिन पानी अंदर आएगा तो फिर नाव डूब जाएगी. तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया जदुरानी माता जी को. सिमिलरली अ डिवोटी इज सिटिंग इन द बोट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, बट वी शुड अंडरस्टैंड दैट दैट बोट इज इन दिस मटीरियल ओशन, सो इट विल रॉक एंड ही विल ऑल्सो मूव. ऑफकोर्स इसमें हम ये बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द मूविंग ऑफ द बोट ही विल नॉट स्लीप ऑल्सो इन साइड द बोट. तो कई बार माया देवी जब हमारे बोट को हिलाती है, ये इसलिए हिलाती है ताकि हम भक्ति में ढीले न पड़े, सोए नहीं. तो ये दो चीज हैं. एक है कि जब कुछ तकलीफें आती हैं, हम थोड़ा हिलते हैं. और एक है संशय आत्मा, का मतलब क्या है कि पानी अंदर आ रहा है. सो फॉर अ टाइम बीइंग व्हेन वी गेट शेकन अप, दैट डजंट मीन दैट वी आर डाउटिंग द मर्सी. इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान की कृपा पे डाउट कर रहे हैं. क्योंकि कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि कई भक्तों के जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, कोई तकलीफें नहीं है, लेकिन उनको कोई उन्होंने कोई वैष्णव अपराध कर दिया और उसके वजह से फिर वो डाउट्स चालू हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के. जब डाउट्स चालू हो जाते हैं, लेकिन उसका कारण कुछ और था. और कई हैं कि जिनके जीवन में बहुत सी तकलीफें होंगी, लेकिन उन्होंने कोई कॉन्शियसली ऐसा कोई अपराध नहीं किया. जैसे कि अजामिल पापी था लेकिन अपराधी नहीं था. तो अगर हम अजामिल का उदाहरण लें तो उसके ऊपर तो कितने आवरण थे पाप के, लेकिन जब उसने नारायण का नाम लिया तो उसने उस समय वो डेस्परेशन में नाम लिया. लेकिन हाँ, उसको भगवत धाम तुरंत नहीं मिला, फिर उसको साधना भक्ति करके उसको भी सुधारना पड़ा और फिर भगवत धाम मिला उसको. तो अगर हमारे अंदर सिंसियरिटी है, और सिंसियरिटी का मतलब क्या है, प्रभुपाद बोले बोट में बैठे रहना और पानी को अंदर नहीं आने देना, उसको बोलते हैं सिंसियरिटी. फिर चाहे बोट कितनी भी डगमगाए, चाहे कितनी भी तकलीफें हमारी आए, हमें ये देखना है कि हम बोट में स्थित हैं और वो बोट हमें ये भाव सागर पार कराए. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डाउटिंग कृष्णा एंड फेसिंग प्रॉब्लम्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. एंड फॉर अ वाइल वी डील विद दैट प्रॉब्लम. जैसे सत्यरूप महाराज जपा रिफॉर्म बुक में उनका एक सीक्वल उन्होंने लिखा था, तो उसमें वो लिखते हैं कि जब हम भगवान के लिए कुछ भोग बना रहे हैं, कुछ रेसिपी, नई रेसिपी हमको पता नहीं, मान लीजिए हलवा बना रहे हैं हम भगवान के लिए, तो हम कौन सी बुक रेफर करेंगे? रेसिपी बुक रेफर करेंगे ना. अब कोई कहे कि अरे भगवान के लिए बना रहे तो भगवद गीता रेफर करो, क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तो हम प्रेम से ऑफर करना है. हाँ, वो तो जरूरी है, लेकिन उस समय उस हलवे को बनाने के लिए आप अगर रेसिपी को रेफर कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि आप भगवान को भूल रहे हो. उन्होंने अच्छा पॉइंट कहा, व्हेन यू आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम एंड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट डजंट मीन दैट यू आर फॉरगेटिंग कृष्णा. Forgetting Krishna and remembering Krishna depends on your motivation and intention. अगर आप recipe book refer कर रहे हो किस लिए, कि भगवान श्री कृष्ण को मैं यह हलवा अच्छे से कैसे बना के खिलाऊं, so that temporarily reading apparently a mundane book, recipe book क्या है, but the intention is to please Krishna. That's not doubting. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय. प्रश्न
प्रभु जी, जब हम कृष्ण भक्ति में कॉन्फिडेंसली भक्ति करते रहते हैं तो कई बार बाहरी समस्याओं को हम लोग झेलते हैं और उसको करते रहते हैं, लेकिन कहीं तो इतने जन्मों या जीवन में इतना सारा इंद्रिय भोग किया है, तो कहीं तो सूक्ष्म इच्छाएं रहती है और माया को वो मालूम होता है कि ये कहाँ पर मार खाएगा, तो फिर माया वो इंद्रिय भोग सामने रख देती है और तब वास्तव में समस्या शुरू हो जाती है. मन इंद्रिय भोग की तरफ आकर्षित होता है और हम उसको छोड़ना चाहते हैं और फिर इस रेस में खुद का उत्साह डाउन हो जाता है या लेथर्जी में आ जाता है, तो कैसे समझे हम लोग ऐसे समय पे डाउटिंग मेंटेलिटी आती है कि ये कब तक चलेगा समस्या, इंद्रिय भोग कब तक रहेगा, छोड़ना चाहते लेकिन नहीं, ये क्योंकि मन को मालूम है कहाँ पर हमारा वीक पॉइंट है और वो उसी की तरफ हमको लेकर जाएगा, तो ऐसे समय पर हमारा उत्साह कम होता है, तो कैसा समझे हम खुद को कि मैं एक बैलेंस लेवल पर हूँ, या एक समझने का क्या ये है, क्योंकि कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो जाता है, तो ऐसे समय कैसे समझे कि मैं सही पथ पर हूँ?
इसलिए तो ऐसे ऐसे प्रसंग जो हैं, जैसे कि अजामिल और पूतना, ये प्रसंग भगवान ने इतने एक्सट्रीम डिग्री पर अपनी कृपा देकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है श्रीमद् भागवत में अपनी लीलाओं के द्वारा, कि यदि हमारे जीवन में छोटी मोटी समस्याएं भी आती हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि अरे अजामिल और पूतना जैसे जिनके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आई कि जो इतने एंटी कृष्णा हो गए, ये लोग मारने के लिए, पूतना मारने के लिए भगवान के लिए, अल्टीमेटली भगवान ने उसको भी सदगति दी, उसकी भी रक्षा की। तो जब हम ये पढ़ते हैं, कोई भी हमारी सिचुएशन हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जब हम ये पढ़ते हैं ऐसे ऐसे राक्षसों का उद्धार भगवान ने किया, तो क्यों भगवान इसको इतने ओपनली कर करके हमको दिखा रहे हैं? ताकि उससे हमारा कॉन्फिडेंस भगवान में इतना ज़्यादा लग जाए कि यही तो ये कैमुत्तक न्याय क्या है कि अगर पूतना, जो यही हम बोल रहे हैं कि एक भक्त तो रोज सोला माला कर रहा है, रोज वो भगवान की सेवा कर रहा है, मंगल आरती अटेंड कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, पूतना ने तो ये सब कुछ भी नहीं किया था, अजामिल ने ये सब कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अगर उनको भी भगवान एंड में, हम लोग क्या है कि ये जो भी पास्ट टाइम्स हैं वो पास्ट टाइम्स का एंड हमको हर समय ध्यान में रखना चाहिए। कई बार हम लोग क्या है कि खाली पास्ट टाइम का एक जो पोर्शन है उसको ही पकड़ लेते हैं। हाँ, कई डिवोटीज अजामिल का जो पापी जीवन है उससे इंस्पिरेशन लेते हैं कि देखो भागवत में मेंशन है तो फिर मेरे को भी ट्राई करना चाहिए। तो हमको कोई भी पास्ट टाइम का जो फलस्तुति है उसका एंड है उससे सीखना चाहिए। जैसे कि ये कई बार होते ना, ये एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आप देखो तो एक मिनट तक आपको समझ में नहीं आएगा कि किसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, फिर लास्ट में आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ ये इसका ये मतलब था कि कोई भाग रहा है कूद रहा है ये वो, फिर लास्ट में वो निकालेगा कैडबरी चॉकलेट, इसको खाने से कूद रहा हूँ मैं, तो उसमें अरे अच्छा ये इसलिए कूद रहा था ये। तो वैसे ही ये जितने पास टाइम्स हैं, जैसे पूतना का पास टाइम आज हमने लिया, तो पूतना का एंड देखना है हमको कि उसका एंड क्या हुआ। उसका एंड ये हुआ कि फाइनली पूतना को ऐसा पद मिला, तो उससे हमारा, हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसके अंदर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, न कि माया देवी के अंदर कॉन्फिडेंस। इसलिए अक्सर मैं ये कहता हूं कि एक भक्त वो अपनी भक्ति में ढीला कब पड़ता है, दो समय। फर्स्ट इज when he underestimates the power of maya, वो भी नहीं करने का, and second is when he underestimates the power of krishna, कि माया के पावर को वो साधारण तरीके से लेता है और भगवान की शक्ति को भी साधारण तरीके से लेता है, ये दोनों स्थिति में फिर वो ढीला पड़ता है। तो जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या माया देवी द्वारा प्रस्तुत होती है तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ये साक्षात्कार ले लेना कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ माया, और उसके साथ साथ भगवान की जो कृपा है उसको भी अंडर एस्टिमेट मत करो। हमें कभी ये समझना ही नहीं चाहिए कि माया देवी में इतनी शक्ति है या मेरे अनर्थों में, पिछले जन्मों से जितने भी अनर्थ हैं उसमें इतनी शक्ति है कि वो भगवान की कृपा को भी ओवर पावर कर जाएगी। हाँ, ये एक अलग अहंकार होता है हमारा, दैट आई एम सो सिनफुल एंड सो फॉलन दैट इवन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु कैनॉट सेव मी। my sin and conditioning is beyond Chaitanya Mahaprabhu's capacity to give me mercy. Now, this is the height of false ego. जैसे वो डिवोटी प्रभुपाद को बोले ना, प्रभुपाद आई एम द मोस्ट फॉलन, प्रभुपाद बोले यू आर द मोस्ट ऑफ नथिंग. कि हम उसके अंदर भी कई बार सोचते हैं कि मेरे अनर्थ बहुत स्पेशल हैं. नहीं, भगवान की कृपा वो इतनी स्पेशल और इतनी शक्तिशाली है कि हम चाहे पूरे संसार का कंडीशनिंग्स ले लें अपने अंदर, जितने सारे पापी जीव, माया देवी की जितनी शक्ति, जितने हमारे कंडीशनिंग, कितने जन्मों के, दूसरों के कितने जन्मों के, सबको हम ले लें तो भी भगवान की शक्ति हजार लाखों करोड़ों गुना हमारे उस कंडीशनिंग से ज़्यादा होगी हमको उद्धार करने के लिए. ये हमें समझ लेना है. तो हमें लग रहा होगा कि फिर भगवान दे क्यों नहीं रहे अभी, अगर है तो अभी दे क्यों नहीं रहे. ये भगवान का एक टेस्ट है. भगवान का टेस्ट क्या है? भगवान का टेस्ट ये है कि जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार चल रहा था तब तो तुम मेरी भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे थे, तो वो तो ठीक है, वो एक लेवल है. लेकिन अभी सीढ़ी के दूसरी स्टेप पे चलना है. जब तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा कुछ, will you still worship me? Even if you don't like, will you still chant my name? That is a higher aspect of love. जैसे दो व्यक्ति जब आपस में किसी संबंध में हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे को प्रेम कर रहा है. क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उसको प्रेम करना. लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता फिर भी मैं उसे प्रेम कर रहा हूं, ये एक हायर लेवल है प्रेम का. तो भगवान कई बार तकलीफ डालते हैं वो लेवल पे हमको लाने के लिए, टेस्ट करने के लिए. दैट विल यू स्टिल वर्शिप मी इवन इफ यू डोंट लाइक टू डू वर्शिप मी एट दैट टाइम. तो बहुत कृष्ण कॉन्शियसनेस जो वैष्णव सिद्धांत हमारा है वो हमको बहुत रिफाइंड स्टेजेस पे ले जाने के लिए. इसलिए भक्ति को सुदुर्लभा कहा गया है. सुदुर्लभा मतलब बहुत रेयरली कोई टिक पाता है, भगवान के ऐसे टेस्ट में खरा उतर पाता है. क्योंकि वही हम बोल रहे हैं, आध्यात्मिक संसार के लायक हमको बनना है, अगर वहां पे प्रेजेंटेबल होना है तो भगवान हमको पूरा वो आग ज़्यादा करके, स्वीट राइस को पका पका के उसको और कंडेंस्ड करके, जितना वो उसको हिलाते हैं, आग बढ़ाते हैं, उसको कंडेंस करते हैं, उतना स्वीट राइस का टेस्ट बढ़ता है ना. चावल उसके अंदर जल रहा है ना, चावल जल रहा है अंदर. चावल बोल रहा है अरे कम करो, गैस कम करो, बहुत ज़्यादा हो रहा है. लेकिन जानकीनाथ प्रभु जब स्वीट राइस बनाते तो गैस जा रहा और घुमाते रहते कि नहीं, भगवान के सामने अगर प्रस्तुत होना है तो न तो तुमको जलना है न कच्चा रहना है कि नहीं. राइट, प्रेजेंटेबल होना चाहिए वो स्वीट राइस. और वो प्रेजेंटेबल स्वीट राइस के लिए कई घंटों तक उसको हिलाते रहना पड़ता है. तो कई बार हमको लगता है अरे इतना हिलाने का क्या जरूरत है, अभी हो गया ना, दिख रहा है ना स्वीट राइस जैसा दिख रहा है, चलो ऑफर कर दो. नहीं, लेकिन वो अगर उत्कृष्ट क्वालिटी ऑल्टर तक पहुंचने के लिए वो हमको बनाना है तो उसको वो क्वालिटी का बनाना चाहिए. तो इसलिए भगवान ये समझना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कोई तकलीफें आ रही हैं तो हमको खुश होना चाहिए कि भगवान हम पर ध्यान दे रहे हैं. ये पॉजिटिव, भगवान ध्यान दे रहे है कि नहीं. जैसे कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में अगर वो जो शिक्षक है वो बोलता है कि चलो तुम इसका उत्तर दो, तो उसको लगता है अरे इतने सारे बैठे हैं मेरे को क्यों चूज किया तुमने, तो उसको उस टाइम लगेगा कि अरे मेरे को तकलीफ में डाल रहा है, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, लेकिन अंदर तसल्ली क्या है कि टीचर मुझ पर ध्यान दे रहा है ना, इसलिए इतने लोगों में से मुझको चुना। तो जब हमारे जीवन में तकलीफ आती तो हमको ऐसे ही लगना चाहिए कि भगवान वो सुप्रीम टीचर है और इतने डिवोटीज में मेरे को चुना इस तकलीफ के लिए कि तुम आंसर दो अभी चलो, तो हमको लगना चाहिए हाँ भगवान ध्यान दे रहे मेरे ऊपर। इसलिए सबसे ज्यादा अगर पीड़ा देने वाली कोई चीज होती है तो आप किसी के ऊपर दुर्लक्षता दिखाओ, उसको प्रेम करो और गाली दो, ये दोनों में ध्यान दे रहे हैं आप उसके ऊपर, तो उसको लगता है मेरा वैल्यू है कुछ, तो गाली तो दे रहे हैं ना, वैल्यू है मतलब, और प्रेम करना वो भी वैल्यू है। लेकिन अगर उसको इग्नोर करो, टू इग्नोर समवन इज द ग्रेटेस्ट पनिशमेंट एनीवन कैन डू। तो अगर भगवान हमको इग्नोर करना शुरू कर दे तो समझना चाहिए कि नाव में पानी आ रहा है। लेकिन अगर दोनों चीज हो रही है, हमारे पास तकलीफें भी हो रही, ये भी हो रही, वो सब हो रहा है, तो समझना चाहिए कि हाँ भगवान का ध्यान है, अच्छा ध्यान है भगवान का मेरे ऊपर। तो इस कॉन्शियसनेस में हमको, चाहे हम आंसर गलत भी क्यों ना दे दें, वो जो टीचर उठाता है, टीचर जब उठा लेता है बोला चलो बच्चा इसका आंसर दो, वो इतना सक पका जाता है और कुछ कुछ उल्टा ही सीधा बोल देता है, चाहे वो उल्टा सीधा बोल दे लेकिन मन में तसल्ली क्या है कि टीचर मुझ पे ध्यान दे, और उल्टा सीधा बोला तो फिर टीचर उसको सिखा सकता है ना, नहीं तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने क्या सीधा बोला क्या उल्टा बोला। तो वैसे ही जब भगवान हमको खड़ा करके तकलीफ देते हैं तो इसमें सबसे पहले तो वो ध्यान दे रहे हैं हमारे ऊपर, और दूसरा अगर हम गलती कर दें उस समय भी तो फिर भगवान क्योंकि ध्यान दे रहे हैं तो तुरंत वहां पे हमको अवश्य ही ठीक करेंगे। अरे यदि पूतना को भगवान इतना कुछ दे सकते हैं तो फिर हमको डरने की क्या जरूरत है। ये पूतना का प्रसंग, भगवान पूतना के द्वारा, उद्धव के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, परीक्षित महाराज के द्वारा, इन सब के द्वारा हमको यही बता रहे दैट आई एम देयर रेडी टू गिव माई कंप्लीट मर्सी टू दोज हु आर सिंसियरली एटलीस्ट ट्राइंग टू प्लीज मी, एंड हियर आर द एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स को पढ़ो, सुनो, समझो और मेरी भक्ति में लगे रहो। जय श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद।